परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सौ वर्ष पहले भगवान ने परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जोन वेद से मैं मिलूं, वे वेद जानते नहीं। ये चारों तुम्हारे पवित्र वेद ये मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इनमें मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 में कहा कि अर्जुन तो उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं है, तो इस कारण से परमात्मा के बारे में जानकारी का ना वेदों में कंप्लीट ज्ञान है और ना ही गीता जी में। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, उत्पन्न होने वाला, कोई निराकार बताता है कि वो जन्म लेता ही नहीं। ये यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। तो क्या बताते हैं परमात्मा? कहते हैं कि वेदों में ब्रह्म तक की साधना है और जानकारी मेरी है। परमेश्वर कहा करते थे कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अपने आत्मा परमात्मा उनको समझा करते थे कि किसी भी सदग्रंथ के अंदर ऐसा नहीं लिखा है जो तुम प्रचार कर रहे हो, तो उसका विरोध करके ही वो ऐसा करते। परमात्मा क्या बताते हैं कबीर जी? सुन का जीरा जी नहीं ये आप अल्लाह खुदाए, गरीब दास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाय। अब इसे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि तुम बताओ किसका आदेश है ये गाय को मारने का, बकरों को मारने का, बलि देने का, तो पुण्यात्मा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दास ने ये ग्रंथ दिखाने पड़े, और बुद्धिमान समाज जब समझ जाएगा कि हम गलती कर रहे थे। और अब भी जो नहीं मानेगा, परमात्मा कहते जानबूझ साची तज और करे झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु स्वपन में भी ना दे। फिर वो व्यक्ति ठीक नहीं जो जानबूझकर भी सच्चाई को ग्रहण नहीं करते, वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, उनसे फिर कोई फायदा नहीं वार्तालाप करने का। अब कबीर परमात्मा क्या कहते हैं? गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध, गरीब दास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूद। ए नालायक काजी, तूने ये माँ को मार दिया, गाय को मार दिया, ये अपनी माता है सबकी, तो आप भी ये मुसलमानों को मना करती नहीं दूध पीने के लिए, ना हिंदुओं को मना करती है, भेदभाव भी नहीं करती, ये सबकी माता है और तुम अपनी माता को ही काट रहे हो और खा रहे हो। तुमने एक बार गऊ काट कर खा ली, अरे वो 10 वर्ष तक तुम्हें दूध पिलाती, घी पिलाती, दही खिलाती, अमृत भोजन छोड़कर तुम गंद खाओ नाला को। परमात्मा उनके हित में कहा करते थे, लेकिन वो स्वार्थी लोग परमात्मा के शत्रु बन गए, अपने कर्म बिगाड़ गए। गौ अपनी अम्मा है तापर छुरी नबा, गरीब दास गिरत दूध को सब ही आत्म खावे, ऐसा खाना खाइए माता के ना हो पीड़े, गरीब दास दर गैसर तेरे गल में पड़े जंजीरे। परमात्मा कहा करते काजी और मुल्लाओं को कि तुम ऐसा पाप मत करो, भगवान के दरबार में न्याय होगा, तुम्हें वहां हथकड़ियों से जकड़ा जाएगा, तुम्हारे को सजा मिलेगी भगवान के दरबार में। और ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़, कहते दूध निकाल ले उसका और वो पी ले, उसको माँ को भी दर्द ना हो। काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे, गरीब दास जुल्ला कही ये बाणी अकल अधीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीब दास मुल्ला मूरग अपनी अपनी बेरे। परमात्मा विधान बताया करते अपना के मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीब दास दोजक धसे पाया नहीं स्वर्ग। जो तुम्हारी वे ऑफ वर्शिप है इस साधना से, जैसे आज कोई मुर्गा है और एक काजी बना है, काजी ने मुर्गे को काट दिया या बकरे को काट दिया, गऊ को काट दिया, अगले जन्म में वो मुर्गा तो बनेगा व्यक्ति और वो काजी बनेगा मुर्गा, फिर वो अपना बदला लेगा और फिर ऐसे ही गर्दन काटेगा, क्योंकि यहाँ का विधान है जो जैसा करेगा उसको टिट फॉर टैट मिलेगा और उसका बदला वो उसको देना पड़ेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं तुम ऐसे दुख को क्यों परचेज कर रहे हो, अगले जन्म में काजी तू मुर्गा बनेगा और ये मुर्गा बनेगा मनुष्य और तेरी गर्दन ये ऐसे ही काटेगा। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फिर कुरान, गरीब दास इस जुलम ते तेरे डूबे दोहू जिहान। जो साधना तू कर रहा, जो क्रिया कर रहे हो तुम काजी, ये तेरे दोनों दिन बिगड़ गए, यानी यहां भी तू दुखी होगा और स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, वहां नरक में डाला जाएगा। मुर्गे से मुल्ला भय, ये मुल्ला फिर मुर्ग, कहते मुर्गा तो मुल्ला बनेगा और मुल्ला फिर बनेगा मुर्गा, मुर्गा तो मुल्ला बनेगा और मुर्गा फिर बनेगा मुल्ला, गरीब दास दोजक दसे फिर पावे नहीं सुरगे। सूर गऊ में एक है गाय खाओ ना सूरे, गरीब दास सूअर गऊ दोनों का एक नूरे। अब आदेश दे रहे हैं परमात्मा के गऊ और सूअर में, हिंदू सूअर खाते थे लेकिन अन्य पशु नहीं खाते, और मुसलमान गायें को शौक से खाते, वो सुअर नहीं खाते, उसको नापाक समझते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सभी का एक ही जैसा शरीर और मांस है भाई, ना गाय खाओ ना सुअर खाओ। सुअर गऊ में एक है गाय बखो ना सुअर, गरीब दास सुअर गऊ दो का एक है नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीब दास तज बैर भाव की जो सुल्लम सुल्ले। अब कहते काजी और पंडित आपस में लड़ते हैं हम श्रेष्ठ हैं, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि न तो आज कोई काजी है कल उसकी मृत्यु हो जाएगा, वो ब्राह्मण के घर भी जन्म लेगा, ले सकता है वो कल को पंडित बन सकता है, और आज कोई पंडित है तो कल को मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। क्योंकि ये धर्म जो हमने अलग अलग बनाए हैं ये तो बहुत थोड़े समय से हैं, उससे पहले कोई मजहब नहीं था, और हम सभी आत्माएं सतयुग से चली आ रही हैं, आपस में हमारे संस्कार रले मिले हैं। आज कोई मुसलमान ग्रुप में जन्म ले चुका है तो अगले जन्म संस्कारवश वो हिंदू ग्रुप में धर्म में भी जन्म ले सकता है। तो कहते हैं तज बैर भाव तुम किज्जे सुल्लम सुल्लह, आपस का बैर भाव छोड़ के अपनी सुलह कर लो, सुलह कर लो, प्यार से रहो। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीब दास दोनों धर्मों के इन ऐसे नादानों का, गरीब दास दोनों दीन का होगा हाल बेहाल। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गदेरा सूर, गरीब दास उस बिस्त में तुमसे अल्लाह दूरी। कति साधना से भगवान तुम्हें निकट नहीं मिलेगा, भगवान निकट नहीं आ सकता, वो दूर है तुमसे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश, गरीब दास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है सो कोसे। कहते हैं घोड़े ऊंट अटक नहीं, कुछ भी ठहर गया उसन खा जाते हो और फिर नमाज करते हो और फिर तुम मंदिर में जाकर घंटी बजाते हो, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही लताड़ रही है परमात्मा जो गलत साधना कर रहे हैं। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश, गरीब दास ऐसे को कर्मी से अल्लाह है सो कोसे। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे, गरीब दास उस नरक में नहीं खुन्नी को ठोरे। कहते उसके लिए तो नरक भी नारा बनाना पड़ेगा जो ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, गरीब दास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ तो कह रहा मैं हक यानी सही कर रहा हूं और एक तरफ से जीवों का नाश कर रहा है, मार रहा है। अब क्या बताते हैं, बासमती चावल पक्के गर्त खांड टुकड़ारे, गरीब दास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। अब परमात्मा ने आहार बता दिया, कहते बासमती चावल पका लो और उसमें खांड और देसी घी डालो और खा के देखो, उस गंध ने खान लग रहे तुम अड़ंगे ने है। कहते हैं फिर आगे फिर बताते हैं नेक्स्ट, फुलके धोआ दाल करे हलवा रोटी खाए, गरीब दास का जी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। अब कितनी प्यारी बात बता दी भगवान ने, खान की चीज तो ये है मनुष्य के आहार, बासमती चावल पक्के गर्त खांड टुकड़ार, घी और खांड डाल के बासमती चावल पका के और फिर भक्ति कर भगवान की, ये कूड़े काम निवार, ये बुंडे काम छोड़ दे, मांस खाना बकवाद करना, और फुलके धोआ दाल कर। कहते हैं मूंग की दाल धोई हो और बढ़िया रोटी बना और हलवा रोटी खा, और नहीं तो हलवा बना देसी घी का और सिंपल रोटी गेल खा। गरीब दास का जी सुनो ये मिट्टी मांस ना पकाए, ये ना खाओ। रोजे रखे खून करे फिर तस्बी ले हाथ, गरीब दास दरगे से रे बहुत करी ते गात। पुणात्मा कहते मांस खाओ और फिर माड़ा लेकर बैठिए अल्लाह अल्लाह करते हो। अरे परमात्मा की आत्मा है चीड़ी चिट्टी से लेकर हाथी तक, और मान लीजिए किसी सेठ या राजा के आपसे छोटे बेटे ने मार दो, छोटी संतान बेटा हो चाहे बेटी, और चाहे बड़े को मार दो, नवजात शिशु को मार दो चाहे बड़े को मार दो, एक जैसा क्रोध एक जैसा दोष एक जैसी सजा आपको राजा आपको देगा। तो परमेश्वर परमात्मा की हम सभी संतान हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, ये बकरे गायें जो भी हैं ये सारे परमात्मा के बच्चे हैं। और इनमें से चाहे बकरे को मारो, चाहे गाय को, चींटी को मारो, चाहे हाथी को, परमात्मा को एक जैसा ही दुख होता है। और हम राजा के एक छोटे बच्चे को, किसी भी बालक को मार के फिर उसी के जाकर फरियाद करें कि हे राजन मुझे ऐसी दया करो, मुझे ऐसा बख्श दो, हमें ये सुख दो, तो वो क्या देगा? तुम्हारे को अंदर ठोक देगा। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि ऊंट घोड़े ऊंट अटक नहीं, और तीतर क्या खरगोश, गरीब दास इसे को कर्मीता है, और अल्लाह है सो कोस। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को दिया था, लेकिन इन अनाड़ियों ने, इन अज्ञानियों ने इस यथार्थ ज्ञान को हम श्रद्धालुओं के तक नहीं आने दिया, और साथ में ये बुराइयों पर काल प्रेरित करके हमें लगाए रखा। अपनात्माओं, परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, अपने सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को वो प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। परमेश्वर कबीर जी को हम पहचान नहीं सके कि हमारा मालिक है। और परमेश्वर कबीर जी की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, उस समय हमें यह महसूस होगा कि वो परमात्मा किस उद्देश्य से यहां आया करते थे, वो किस लिए आते हैं भगवान यहां पर। उनका उद्देश्य यह है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और यहां तुम्हारी दुर्गति कर रखी है इस काल ने, आपके साथ सारा जो कुछ भी किया जा रहा है छलावा है, आपको धोखे में रखा हुआ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी परमात्मा पा सकता है, और इस मनुष्य जीवन में इसको इतना मूर्ख बना दिया, और वैसे ये इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा इस मनुष्य जीवन में इस प्राणी के साथ है। अब जैसे आज हमारे को ये मिट्टी के खिलौनों से खेलने की आदत डाल दी, जैसे एक कार ले ले, एक ने कार ली, दूसरे की इच्छा बनी, हुक एंड क्रुक किसी ना किसी मार्ग तरीके से एक नंबर दो नंबर करके कार ले लेगा, और उसी कार में मृत्यु को प्राप्त हो जाता दुर्घटनाग्रस्त होकर के। अपने आत्माओं, जब तक ये प्राणी मनुष्य शरीर के अंदर है, इसकी कैसी वृत्ति बना दी, इतना बेसबरा बना दिया कि इसने एक मकान में संतुष्टि नहीं, एक कमरे में संतुष्टि नहीं, और थोड़े से धन में संतुष्टि नहीं। अब किसी के पास एक प्लाट है तो उसकी यही कामना रहती है, भगवान इसमें दो कमरे रसोई बन जा, एक बरंडा हो जाए, बाथरूम हो जाए, बस मन इतना ही बहुत है। अब जब वो बन जाता है फिर क्या सोचता है कि एक बेटा और है, एक प्लाट और हो जाता बहुत अच्छा हो, वो प्लाट भी हो जाता है। फिर सोचता है इसमें दो कमरे और बना दूं, दूसरे बेटे की व्यवस्था भी कर दूं, कल नहीं ये अलग अलग भी होंगे, वो भी हो जाता है। फिर सोचता है कि वहां एक प्लाट और अच्छा मिल रहा है, वहां और ले लूं, और ऐसे जोड़ जुगाड़ में इसका यो टाइम पास करवा देता है, काल के इसका मृत्यु हो जाती है। और फिर वो व्यक्ति कुत्ता बनकर उन्हीं कोठी मकानों के साइड में बगल में बैठता आकर के, गली में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये धोखा नहीं तो और क्या है पुण्यात्मा? आज तक हमें ये ज्ञान मिला नहीं, और किसी साधु संत ने वैसे औपचारिकता से ज्ञान बताने की चेष्टा भी की और हम प्रेरित भी हो गए, तो उनके चपग्गे उन नकली गुरुओं के, उनके पास वो मोक्ष मार्ग नहीं था जिससे ये जन्म मरण और इस धोखे से पीछा छूट सके, तो वो काल के दूत हैं। ये जो ज्ञान और ये समाधान है, ये तो पुण्यात्मा आपका ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के इतने पुण्य हैं जो आपको ये सहज में मिल रहा है। धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, ये सत्कर मान लेना। ये कोई बालकों का खेल नहीं है, हमारा कोई परंपरागत या कोई दादा परदादों के व्यवसाय नहीं था जो दास इस कार्य को कर रहा है, परमात्मा का आदेश है ये। और उद्देश्य यही है कि तुम सभी परमात्मा को पहचानो और चलो अपने लोक में। जैसे कल भी बताया था, कई अनाड़ी इस काल के रंग में रंगे हुए, ऐसा भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि यदि सभी यहां से चले गए तो पृथ्वी पर कौन रहेगा, वहां तुम रह लिए पृथ्वी पर, रह लिए सारी पे इकलाई। अरे ये और ग्रह धक्के खान भटक रहे हैं, ऊपर घूमते रहेंगे, यो भी एक ग्रह है पृथ्वी, वो सारे खाली पड़े, ये भी पड़ी रहेगी खाली, बता इस बिना के आठ लग रही है, तो कैद है, जेल है हमारे लिए। और जेल में कोई ये कह सभी खाली होगी जेल, सभी अच्छे आदमी हो जाएंगे और जेल से निकल जाएंगे, तो जेल में कौन रहेगा, उसमें कितौर बना देंगे कुछ स्मारक बड़ी ऐसी थोड़ा बढ़िया और व्यवस्था कर लेंगे, जरूरी है उसमें वो जेल में रहना। तो पुण्यात्मा हम सतलोक चलेंगे और यहां जो रह रहे हैं ये बिल्कुल गंदा लोक है, ये अच्छा स्थान नहीं है। कल भी आपको बताया था हम क्या मांगते हैं, यदि कोई गांव का सरपंच बन जाता है उसकी चेष्टा होती चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है तो इन्होंने सोचा खूब पॉपुलर होगा तो एमएलए की टिकट ले, एमएलए भी बन जाता है, एमएलए बनने के बाद सोचता है मंत्री बनूं और मंत्री बन जाता है, फिर इन्होंने सोचा नई बात बनी, अब भी पराधीन हूं मुख्यमंत्री के, मैं मुख्यमंत्री बनूं, अब मुख्यमंत्रियों की क्या दुर्गति है। यानी राजा जो होता हो जाता है वो कितना दुखी है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी राजा को सुख सपने में भी नहीं हो सकता। जैसे एक परिवार का मुखिया पांच सात परिवार यानी व्यक्तियों के अरेंजमेंट में वो कितना परेशान होता है, किसी का ब्याह, किसी का पढ़ाई का खर्चा, किसी का कोई छूतछक, किसी का भात, कई कई बार तो रात में नींद नहीं आती उसको, कितना परेशान रहता है। और राजा एक इतनी बड़ी प्रजा का पिता हो जाता है, कहीं कोई एमएलए कुछ कर रहा है, कि तो कोई स्ट्राइक हो रही है, कि तो अकाल गिर गया, कि तो फ्लड आएगी, कि तो ओले पड़ गए, तो उसको नींद सपने में भी नहीं आती, गुटी लाग पड़े रात में और हमने नो दिखा बड़ा वो तो ठाठ कर रहा है, नहीं। ये हमारी अज्ञान सोच से हमें वो मौज में दिखाई देता है। और पुण्यात्माओं जैसे कल भी बताया था कि एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसकी कितनी आशाएं थी, मैं ऐसे करूंगा, अपने विकास करूंगा, ऐसा करूंगा, कोई फैक्ट्री लाऊंगा, और वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट होने से क्रैश हो गया, उसकी मृत्यु होगी, तीन दिन में लाश मिली उसकी। और अभी हफ्ता हुआ जब इस एक और मुख्यमंत्री के साथ ऐसी दुर्घटना घटी, कौन से प्रांत का था, अरुणाचल का, कितका, सात दिन में लाश मिली उसकी और हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हो गया। पुण्यात्मा ये नहीं है कि हम ना मराएंगे और वो ही मर गए, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं परमात्मा के आदेश को, संदेश को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये झूठे लालच में आपको मूर्ख बना रखा है, जो मूल कार्य था मनुष्य जीवन का वो तीन कराया को नहीं, और अपने ही पुण्यों के कारण आज कोई राजा बन रहा है, कोई कुछ किसी पोस्ट को प्राप्त है, कोई धनी है, कोई अमीर है या गरीब है, वो पिछले संस्कार से है, वो बैटरी चार्ज थी पिछले जन्म की, जैसे इन्वर्टर की बैटरी पहले से जो चार्ज है आगे चार्जर ना लगे तो भी वो कार्य करती रहती है। और फिर एकदम डिस्चार्ज हो जाती है, सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं। ऐसे इन भक्तिहीन प्राणियों को और जो शास्त्र विरुद्ध साधना भी कर रहे हैं, उनका चार्जर ठीक नहीं है, उनकी भविष्य की भक्ति ठीक नहीं है, उनका पुण्य नहीं बन रहे हैं, और पिछले पुण्य के कारण आज वो कितने ही उच्च पोस्ट या उच्च पद पर हैं, या कोई अच्छे कोई व्यवस्था है उनके पास, कोई धनी है, तो उनकी पिछली बैटरी पिछले पुण्य चल रहे हैं और आगे पुण्य वो कर नहीं रहे, फिर एकदम ऐसे बैटरी डिस्चार्ज होगी जैसे मुख्यमंत्रियों की होगी। और पोलैंड देश के पूरा कैबिनेट लगभग उसमें 95 व्यक्ति बतावे थे, सारे मंत्री भी प्रधानमंत्री भी, और जहाज से गिर के नष्ट हो गया। झूठे सुख को सुख कह ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। अपना आत्मा रोहतक के अंदर एक परिवार था, उस वृद्ध का एक लड़का तो फाइनेंसर था और एक लड़का जज लग गया था, और जज लड़के का विवाह भी एक लड़की जज से ही हो गया था। हमारे भक्त उसके पास गए, फाइनेंसर से कुछ फाइनेंस कराई थी, एक जीप शुरू में हमने उससे मिले, वो लड़का तो मिला नहीं उस दिन, जिसने फाइनेंस किया था वो बूढ़ा बैठा पा गया, उनका पिताजी, और उसने कहा भाई बैठ जाओ, अभी वो आ जाता, मेरा लड़का फाइनेंसर उसके ऑफिस में बैठे थे, बैठ गए, उसकी इंतजार करने लगे। तो हमारे भक्त जहां बैठते हैं कहते हैं चंदन का गुटका, चंदन की लकड़ी कहीं से छोटी सी भी क्यों ना हो, जहां भी होगी वहां महक शुरू कर देती है, अपना सुगंध छोड़ना शुरू कर देती है। तो इन भक्तों ने प्रारंभ किया, अपनी चर्चा करनी शुरू की के ताऊ जी भक्ति करा करो। वो कहने लगा बेटा भक्ति में बहुत करता हूं, बहुत भक्ति भी करते हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। फिर हमारे भक्तों ने कहा कि गुरु बनाओ, गुरु बिन बात नहीं बनती। वो कहने लगा जी हमने गुरु भी बना रखे हैं। फिर हमारे भक्त कहते हैं कि तुम्हारी साधना ठीक नहीं है। इस बात पर वो अक्षुब्ध हो जाते हैं कि नहीं नहीं आप ये गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। अब भगत चुप हो गए, जब बूढ़ा सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ये ब्रह्मवाटी करवा दी नकली गुरुआ ने, ये भूत बनकर मारे किल किया डाक, जो भगवान इनका गुट मारे या घेर के, फिर या इनको अलाउड नहीं, और ये फिर भी डीठ आ जाते हैं तो पिटेंगे यहां पर। तो पुनात्मा उस बुजुर्ग ने क्या कहा कि भाई आज मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, एक लड़का जज और लड़के की पत्नी भी जज, अभी शादी हुई है 6 महीने हो गए, और एक लड़का फाइनेंसर है, मेरी तो ठाट कर रखी है, मेरे भगवान ने जो साधना मैं करता हूं उस गुरु से मुझे मौज हो रही है मेरी, तुम ऐसा मत कहो कि तुम्हारे गुरु ठीक नहीं, भक्ति ठीक नहीं। अब इससे आगे हमारे वक्त के बोलना के कम उस अनजान को। अपुनात्माओं कुछ दिन के बाद समाचार पत्रों में ये भगत जी तो आगे उठ कर भी माथा मारे, जिसके बुजुर्ग वैसे हैं सुनने को तैयार नहीं, और ये कह रहा कि मैं जो साधना करता हूं उससे मुझे सारे ठाट हो रहे, और उस समय उसकी उस बात में दम भी बहुत था। तो हमारे भक्त को नहीं बोले ठीक है ये नहीं मानेगा। अब 6 महीने के बाद समाचार पत्र में पढ़ने को मिला उसी फाइनेंसर का नाम, उससे हम प्रभावित हुए कि ये तो वही है जिससे ये हमने फाइनेंस कराई थी एक जीप। उस क्या लिखा था कि उसके पिताजी ने अपने गुरुजी से धार्मिक अनुष्ठान करवाया, उस फाइनेंसर के उस पिताजी ने, जो ने कहा था मेरे गुरुजी के कारण मेरे सारे ठाट हो रहे हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया, सारा परिवार बुला रखा था उस धार्मिक अनुष्ठान के उपलक्ष में, रविवार का दिन। तो गुरु जी ने जो सारा कुछ क्रिया कुरिया कर ली उस दिन, वो करके अपना चला गया, और उसमें ये कहा कि ये जो हवन आदि मैंने किया है, इस वर्जित सामग्री को, शेष बची हुई सामग्री को और बहते पानी में विसर्जित कर देना। अगले दिन या उसी दिन जैसे भी, वो दोनों लड़के, वो जज और वो फाइनेंसर, उस अनुष्ठान से बचे हुई बबूत व फूल फाल जो प्रयोग किए जाते हैं, उनको इकट्ठा करके गुरु जी के आदेश अनुसार वो दोनों बच्चे, वो फाइनेंसर और जज, वो दोनों के दोनों वो जवाहरलाल नेहरू कैनाल JLN, उसमें विसर्जन करने के लिए चले गए। साथ में ड्राइवर था कार से, और वहां जाकर के उन्होंने वो जो भी फूल थे और राख थी ऐसे डाल दी, वह थैली में डाल रखे थे, वह साइड में पानी थोड़ा कम हो रहा था, पटरी के ऊपर पक्की पटरी थी ऐसे स्लोप में, वो किनारे पर गिर गई। उन्होंने सोचा ये जल प्रवाह हुई नहीं, तो एक जना नीचे को एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर खड़ा रहा और एक नीचे को उसको हाथ से ऐसे नीचे को करने लगा, उसका पैर स्लिप गया, काई लगी हुई थी, पानी कुछ कम हुआ था तो गिल्ला था वो, उसका हाथ नीचे थलस गया, तो हाथ जब जोर से पकड़ रहा था ऊपर वाले का जो किनारे पर पकड़े खड़ा था उसका भाई, और वो भी साथ नीचे गिर गया, दोनों दरिया में उस नहर में गिर गए। और ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा है, अब वो क्या करे, अब वो खत्म हो गए। तीसरे दिन सौ मिला उनको, वहां जाकर सा लावास पंप हाउस पर जाकर अपने आत्मा हो, अब वो टक्कर मार कर हो रहा है, बुड्ढा इतना बुरी तरह डकरा रहा, मैं उजड़ गया। अब वो जो जज का ब्याह हुआ था, जज लड़की से, वो लड़की चली गई छोड़ के, उसको वहां रहे 30,000 रुपए, वो अब उसका सर्वनाश हो गया। पुणात्माओं, परमात्मा कहते हैं जो उठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, जो सकल चबीना काल का कुछ मुख मगोद, आपको मूर्ख बनाकर यहां रखा है इस काल ने। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। कबीर परमात्मा कहा करते थे तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनू तापम। पुणात्माओं, प्रारब्ध के अंदर जो दुख आपके ऊपर होते हैं, आपके ऊपर कष्ट आते हैं, ये तीन ताप के अंतर्गत भी होते हैं और प्रारब्ध के भी कष्ट होते हैं। तीन ताप के अंतर्गत है जैसे किसी ने आपको श्राप दे दिया, ये अध्यात्म कष्ट है आपके ऊपर, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने आपके ऊपर जंतर मंतर कर दिया, घायल गलवा दी, कोई भूत प्रेत छोड़ दिए, ये इन भगवानों की भक्तियों से नहीं दूर हो सकते। ये जो तुम स्याणे का आग्रह ना स्याणे है, ये जंतर मंत्र कर देते हैं, ये इन प्रेतों को नहीं हटा सकते आपके घर से, ये तो कंप्रोमाइज करा देते हैं आपका कि इनकी न्यू बना दो, मंडी बनवा दो, हैं ये फिर तुम ना कष्ट ना के उधर रोज वहीं रहे, दो दिन पाचे फिर उद मस्ताड़ देते हैं, इसके पांच चौन लत्ते भिजवा दो, वो कंप्रोमाइज करा देते हैं। और वो भी मूर्ख हैं जो भूत बन गए उनकी, क्योंकि वो पहले इंसान थे, उनमें वही आस्थाएं, वही साधन, वो क्रियाएं भरी पड़ी थी, उतनी बुद्धि उनके अंदर सीमित है, क्योंकि ये ऊपर का कवर ही छोटा है, अंदर सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण में जो की त्यों प्रेरणाएं, वही विचार, वही स्वभाव उनका बना रहता है। इन तीन तत्वों का कष्ट भी इन भगवानों से नहीं हट सकता। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी में अर्जुन को ज्ञान देते समय काल का संवाद सुना है, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तू तो केवल निमित्त मात्र है। और फिर जब महाभारत का युद्ध हो लिया और उसको युधिष्ठिर को बुरे सौपन आने लगे, अब उसने खाना पीना छूट गया और ऐसे आंखें होगी ऐसे देख रहा, भयभीत सा होकर रात को बैठकर ऐसे डरा हुआ रहता है। राजगद्दी पर बैठा राजा की दुर्गति हो गई क्योंकि लाखों लोग मरवा दिए उसने, और फिर बैठ कर वो राज कर रहा है। वो आत्माएं जो युद्ध में मारे गए उनकी आत्माएं उसको कचोट रही थी, उसके सारे जंतर मंतर करा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। फिर सोचा कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास गए तब उनको सारा हाल से अवगत कराया गया, परिचित कराया गया कि भाई को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, ऐसा बुरा हाल हो रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि ये कारण जो है ये आपके ऊपर जो आपत्ति आई है युधिष्ठिर पर, इसका कारण है कि आप जी ने महाभारत के युद्ध में जो बंधुघात किया, जो पाप किए, वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। इसका समाधान क्या है कि अश्वमेध यज्ञ करो और पृथ्वी के सभी पुण्य आत्माओं को आमंत्रित करो, जितने अधिक से अधिक व्यक्ति आवेंगे, भोजन खाएंगे, तुम्हारे पाप हल्के हो जाएंगे। उन्होंने सभी देवी देवताओं को, स्वर्ग के देवताओं तक भी आमंत्रित कर दिया, पृथ्वी के सभी संत महर्षि मंडलेश्वर और सभी को बुला लिया। और यज्ञ की सफलता का एक प्रतीक रखा गया कि एक पंच जन्य संख, पंचायन संख, पांच मुख का, पंच आनंद यानी एक संख होता है एक मुख का, वो संख था पांच मुख का। और वो अलग से एक सुसज्जित स्टेज बनाकर आदर से एक मेज पर अलग से रख दिया गया कि जिस समय ये सभी भक्त आत्मा इस धर्म यज्ञ में भोजन प्राप्त कर लेंगे तो वो शंख अपने आप बजेगा, अपने आप आवाज करेगा, तो समझ लेना कि आपका यज्ञ पूर्ण हो गया और आपके ये संकट निवारण हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। दूर दूर के बड़े बड़े महापुरुष श्री कृष्ण जी ने और 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ, 84 सिद्ध पुरुष और 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण जी के वंश से, वो सारे 16 नौत थी उनकी, और वह भी आ गए। सब ने भोजन खा लिया, शंख ना बजा। अब श्री कृष्ण जी चिंतित हुए और युधिष्ठिर तो चिंतित थे ही कि हमारा शंख नहीं बज सकता, हमारी शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी थे कि भगवान हम बहुत अपराध कर चुके हैं, आपने सही कहा कि हमारे महाभारत में किए हुए युद्ध हमें दुखदाई हो रहे और ये शंख नहीं बज सकता, हमने तो अत्याचार कर रखा है। वो मासूम बच्चे रो रहे हैं, अपनी माताओं के सीने से लिपट कर, हमारे पिताजी कब आएंगे, जो युद्ध में मारे गए सैनिकों के, वो बच्चे रो रहे हैं, वो विधवाएं अपना रो रही हैं, टक्कर मार रही हैं, हमारा पाप नाश नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई पाप नाश तो होगा, पर पाप का नाश करने वाला संत भक्त आया नहीं। कौन? फिर उनको उन्होंने बताया कि एक सुदर्शन नाम के महात्मा है और वो पूरे संत के और सत भक्ति करने वाले साधक हैं, वो आवेंगे, भोजन पाएंगे तो तुम्हारे ये तीन ताप भी दूर हो जाएंगे। सुदर्शन जी कौन थे? परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में कबीर परमेश्वर जी करुणामय नाम से अवतरित थे और एक बाल्मीक के घर उनकी ऐसे ही परवरिश हुई थी जैसे नीरु और नीमा ने कलयुग में की थी, ऐसे ही उनको कमल के फूल पर मालिक मिले थे। और उनका उस समय एक शिष्ठा सुदर्शन सुपच बाल्मीक जाति से ही संबंधित था, वो उनका परम भक्त, और उस परम भक्त को परमात्मा ने सतनाम दे रखा था, सत भक्ति वो करता था। तो जहां वो काशी के अंदर वो सुपच सुदर्शन रहता था और उधर नोता देने की इनविटेशन देने का कार्य भीम पांडवों के जम्मे ला रखा था भीमसेन का। तो भीमसेन सुदर्शन जी के पास गया था उसकी झोपड़ी में, और भीमसेन ने कहा था कि भगवान हमारे यज्ञ में चलिएगा और मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूं। तब परमात्मा के ज्ञान के आधार से, तत्व ज्ञान के आधार से सुदर्शन जी ने कहा था कि भीम तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक जाएगा, तुमने ऐसा पाप कर रखा है, ऐसा जुल्म किया है, किसके लिए, एक राज्य के लिए, एक पेट के लिए तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, और तुम्हारा जो अन्न भी खा लेगा पापियों वो भी नरक में जाओगा, और यदि मुझे लेकर चलना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ऐसी ऐसी कोई तुम्हारे पुण्यों में रखी हो तो ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारा अन्न खा सकता हूं। अब भीम कहने लगा कि हम तो पहली यज्ञ करने जा रहे हैं और 100 यज्ञ का पुण्य कहां से लाऊं, और तूने जो ये बकवाद की है कि तुम पापी हो, तुम ऐसे कर रहे हो, ज्यादा मत बोला बाबा जी, मुझे भगवान का श्री कृष्ण से और अपने भाई से मुझे युधिष्ठिर से लज्जा आ रही है ना तेरी, अब थोबड़ी तोड़ देता मैं, फालतू बोला था। और यूं कहकर वो आ गया था, सुदर्शन जी नहीं गए थे। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भाई भीम आप उधर गए हो, क्या उस महात्मा सुदर्शन जी को आमंत्रित नहीं किया? तब भीमसेन कहने लगा जी आमंत्रित तक किया था, पर वो तो कबूल आदमी है, वो तो बहुत बूंदा बोला है, नू कह तुम तो पापी हो, अपराधी हो, तुमने ऐसा घोर पाप कर रखा है और 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो तब मैं चलूं। अब कृष्ण जी को पता था कि ये भीम भी कम को ना पता नहीं के बकवाद करके आया होगा, तो श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर तू के बोला, तूने के जवाब दिया उसको? अब भीम कहने लगा मैंने उसको ये जवाब दिया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी से लज्जा है, उनकी शर्म मानता हूं, ना मैं तेरी थोबड़ी तोड़ देता, तो ऐसा बोल रहा है, हमें पापी कह रहा है, तेरे मुंह पर मारू मैं। तो श्री कृष्ण कहने लगा भले आदमियों, महापुरुषों को ऐसे बोलना भी अपराध और पाप होता है, तूने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, और आज के दिन उस महापुरुष के एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है, और तुम्हारा कार्य उन्हीं से सद होगा, ना तो मरो फिर भुगत कर, ये तो शुरुआत है, कल न तुम्हारे में बुतावेंगे, दूसरे में भी आओगे तो धीरे धीरे पूरा परिवार ने घेरेंगे, तब उसने समस्या होगी। अब कहते हैं मरता क्या नहीं करता, श्री कृष्ण कहने लगा चल नाक रगड़ उस महापुरुष के चरणों में और उसको लाओ, किसी तरह हाथ पैर जोड़ कर चलो चलते हैं। 5 पांडव, 6 कृष्ण भगवान त्रिलोकी के नाथ, और रथ लेकर चल पड़े। उधर से सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव करुणा में यानी कबीर परमेश्वर जी से कहा प्रभु आज ऐसे ऐसे वो आया था भीमसेन पहलवान और मैंने उसको ये जवाब दे दिया, वो नाराज होकर चला गया। परमात्मा बोले जवाब तत्ने भाई कति अकॉर्डिंग टू द शास्त्र दिया, ठीक कहा, नाराज हो गया तो उसकी मर्जी होया रहेगा। परमात्मा ने कहा सुदर्शन वो फिर आवेंगे, नाक रख लेंगे यहां पर तेरे सामने, उनका कित ठिकाना कोई ना। तो सुदर्शन कहने लगा जी वहां तो वो कह रहा था युद्ध वो आवेंगे, क्या नाम है, 33 करोड़ देवता आवेंगे, 88,000 ऋषि आवेंगे, दुर्वासा जैसे सद्पुरुष और गोरखनाथ जैसी आत्माएं आऊंगी। परमात्मा बोले उड़कते वहां से कोई आया रहो, वो नकलियों तो कुछ ना हो उनका, और वो वापस आएंगे। आप अब सुदर्शन ने सोचा ये फिर आके सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले आते। वो तो निकल गया सैर सपाटे को, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम की तो दूर पहुंच गया, और पीछे तो वो आ ही गए। उधर से परमेश्वर ने स्वयं करुणा में, यानी कबीर देव जी ने अपने भगत का रूप बना के उनके इज्जत रखने के लिए वहां बैठ गए। अब कहने का भाव ये है कि वो हाथ पैर जोड़ के परमात्मा को वहां से ले आए। अब परमेश्वर ने कहा था कि भाई मेरी एक शर्त है श्री कृष्ण जी से, मैं चल पड़ूंगा। जैसे कि कल तुझे बताया था, क्योंकि एज ए वो सुदर्शन रोल कर रहे हैं भगवान। अब कहा था कि कल ये आया था उस दिन भक्त पहलवान, मैंने इनसे कहा था कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे संकल्प करो, तब मैं तुम्हारा आहार करूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा परमात्मा आपकी वाणी है, क्योंकि ये वाणी अमृत वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी परमेश्वर ने चारों युगों में बोली है, ये सिद्धार्थ ज्ञान चारों युगों में दिया है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप ही का आदेश है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञवान। ये परमात्मा आपका विधान है, आपका आदेश है कि संत मिलने को जब चले तो मान अभिमान त्याग कर जो दर्शनार्थ आता है उसको एक कदम का फल एक अश्वमेध यज्ञ के तुल मिलता है। और हम अब ये पांचों पांडव आज इनके अंदर अभिमान नाम का वस्तु नहीं, क्योंकि इनकी बेइज्जती होने लग रही, लाखों लोगों ने भोजन करा दिया, करोड़ों ने, फिर भी इनका काम नहीं बन रहा। आज ये कति विनम्र है और मुझ दास से तो आप परिचित ही है, श्री कृष्ण जी कहते हैं। और वहां से लेकर यहां तक हमारे आने के जितने भी पुण्य बने हैं, आपके दर्शनार्थ आने के जो पुण्य बनते हैं संत के दर्शन के लिए, उनमें से 100 यज्ञ का फल आप रख लो, शेष हमारी झोली में डाल दो। अब परमात्मा तो उनका भाव देखना चाहते कि जब उनमें अभिमान होगा, सच्ची समर्पण नहीं होगा, सच्ची आस्था नहीं होगी, तो परमात्मा का भी लाभ उन्हें नहीं मिल सकता, परमात्मा के जाने से भी लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए उनको विनम्र करना अति आवश्यक था। वो पांचों पांडव तो कति विनम्र हो रहे थे, बिग्गी बिल्ली बन गए। अब परमात्मा को बैठाकर वो चल पड़े। अब जहां पर वो मंडप छाया हुआ था, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सब विराजमान थे वहां पर, और परमात्मा ने सुदर्शन सुपच का, यानी एक बाल्मीक गरीब से व्यक्ति की वेशभूषा बनाकर, जिसमें वो कुदरती रहा करते थे, जैसे जो नहाए के रूप में रहते थे, ऐसे बाल्मीकि की जैसी व्यवस्था वेशभूषा द्वापर में थी वैसे रह रहे थे। छोटी छोटी दाढ़ी, सर पर बाल उलट पुलट से पड़े हुए, और धोती बांध रखी, मैले से कपड़े, पैरों में टूटे से जूते लीतर, और आगे ऐसा लग रहा है जैसे नहाए भी 3 दिन हो गए हों। अब वहां बैठे वो छैल छींट मंडलेश्वर दाढ़ी भात फेरन, कदे बाला भात फेरन, देखो कपड़ा का नहीं, बैठे ठाठते आसन दे रखे उनको सभी अलग अलग। और जब देखा उस सुदर्शन को गरीब से व्यक्ति के रूप में परमात्मा को, सभी ने अपने हाथों में कपड़ा डालकर मुंह पर हंस रहे हैं कि ये क्या पकड़ लाए, इससे क्या ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, इनके प्रारब्ध के पाप हैं, इन पर 3 ताप हैं, ये तो भोगने पड़ेंगे। जैसे ये सब कथाएं सुनाते हैं, जैसे श्री विष्णु जी ने भी नारद के साप व श्री रामचंद्र रूप में आना पड़ा था, वो तो भोगना ही पड़ता है, ये साप नहीं कटा करते, ये 3 ताप भोगने ही पड़ते हैं, इनके पाप ज्यादा हैं। अब सुदर्शन जी के रूप में, अब सुदर्शन कहूं तो अच्छा रहे, वह परमात्मा बैठ गए, आकर के आसन दे दिया अलग से। द्रौपदी से कहा श्री कृष्ण जी ने कि बहन अब भोजन बना दे स्वादिष्ट, इन महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारा युकार्य सिद्ध होगा। अब जब सब कुछ आंट अड़ ली, हर तरह से फेल हो लिए, विफल हो गए और एक किरण दिखाई दी द्रौपदी ने, अपने हाथों भोजन बनाया, नौकरों से नहीं कहा कि कहीं महापुरुष के भोजन के बनाने में कोई त्रुटि ना रह जाए, अपने हाथ से भोजन बनाया, हलवा खीर पूड़े पूड़ी कपोड़ कचौड़ी व दही बड़े हरे तैयार कर दिए, 56 प्रकार के भोजन, और अलग अलग कटोरियों में लाकर के सुदर्शन जी के सामने रख दिए। परमात्मा बैठे थे कबीर जी सुदर्शन रूप में। अब द्रौपदी ने यह सोचा था कि ऐसा भोजन बना दिया है, महात्मा जी खाओगे रंगली चाटेंगे उंगली चाटेंगे और 100 जगह जाकर नौकेंगे वे द्रौपदी जैसा भोजन हमने कितना खाया को नहीं, इतना स्वादिष्ट था। अयो घास फूस तोड़ के खानी आदमी आज खीर पकौड़ी खाओगा, देखना मेरे हाथ से बनी हुई कितनी खुश होगा। अरे कुदरती बात है, जो बहन खाना बनाती है, अतिथि आ जाता है तो बहुत सावधानी से भोजन तैयार करती है और यूं सोचती है कि कहीं मेरे बनाए हुए आहार में कोई नमक मिर्च की ये त्रुटि ना बता दे। अगर यदि कोई ऐसा कह देता है कि नमक ठीक कोनी, तो भोजन बनाने वाली बहन का कलेजा दुखिया करे, अगतरी बेजती होगी। तो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही खा जाते हैं, वो किसी के प्राय घर में जाकर नो नहीं कहा करते मन नमक को ना, मनो कहा कर बड़ा बढ़िया भोजन पाया, ओहो आनंद हो गए, किसी की आत्मा को दुखाया नहीं जाता। अब परमात्मा ने क्या किया कि सारे भोजन अलग अलग जो कटोरी में हलवा खीर दही बड़े नमक मिर्च दाल सब्जी जो कुछ भी थी, वो सारी थोड़ी थोड़ी जितना खाना था उस आधार से उस थाली में डाल लिए, कटोरी बाहर रख दी और सबकी खिचड़ी बना ली। अब द्रौपदी देख खड़ी खड़ी कि यू क्या कर रहा है, अब उसके मन में दोष आ गया कि ये रहा सूदर का सूदर, इसने खान का भी ना बेरा, यू काहे के घंट बजाओगा, मन 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 सोच रही है काहे के शंख बजाओगा। अब वो ऐसा मिला लिया सारा खिचड़ी बना ली और परमात्मा ने एक ग्रास खाया, वो शंख रखा था दूर, उसकी आवाज हुई, आवाज हुई उसमें से, आवाज निकली जो खूब जोर की, फिर बंद हो गया, फिर दोबारा ग्रास खाया, फिर आवाज करी, ऐसे 5 ग्रास खाकर वो सारा भोजन 5 ग्रासों में खा लिया और 5 ही बार वो शंख ने आवाज लगाई और फिर बंद हो गया। अब युधिष्ठिर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहने लगे भगवान बड़ी दया होगी, आपकी दया से हमारा कार्य सिद्ध हो गया। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं अभी नहीं हुआ, ये तो बहुत देर तक आवाज करनी चाहिए थी शंख ने, न्यू नहीं टुकड़ों में नहीं बजना चाहिए था, अखंड बजना चाहिए था ये। युधिष्ठिर फिर पेट पकड़ कर बैठ गया, कलेजा पकड़ कर, भगवान अब कौन रह गया महापुरुष। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा ने श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि दे दी, वो देख रहे थे कि ये कैसी परम शक्ति है, ये तो वह नहीं पहचान सके कि ये, लेकिन उनकी शक्ति से आभास हो रहा था कि ये बहुत बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पे, और इस बाल्मीक दिखा है ना जो आपने, ये बाल्मीक सा, इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं, इतनी परम शक्ति युक्त है युधिष्ठिर योग, लेकिन इसके भोजन से और अखंड धुन नहीं हुई, आवाज नहीं हुई, तो अपना कोई और डिफेक्ट है, क्योंकि पावरफुल है बाहर जिससे कनेक्शन ले रखा, तो पंखा नहीं चल रहा तो पंखे में डिफेक्ट है, तो पंखा देखते हैं भाई क्या डिफेक्ट है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, क्योंकि श्री कृष्ण की एक नजर भगवान में थी, जो भोजन खाओ थे मिलाकर एक नजर थी उसमें द्रौपदी में, अगवन्यो करे थी अंदर अंदर, वो जान गया कि आके मन के में कड्डी बिगाड़ रही है, तो उसने कहा कि बहन आजा द्रौपदी सच्ची बात बता, तूने के सोचा मन में जब ये महात्मा भोजन खा रहे थे और जिस कारण से यह बात बिगड़ गई कति, तो अपनी सच्ची बात बता दी और याचना कर ले अपने अपराध की, नहीं तो ये शंख नहीं बज जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी दुर्गति शुरू हो जाएगी। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी ने सच्ची बता दी कि भगवान मैंने तो एक घंटे दो घंटे तक तो धूमे में आग फड़वाई चूल्हे पर, अपने हाथों आहार बनाया, और न सोचा था महाराज जी खाएंगे और उंगली चाटेंगे, खुशी मनाएंगे, मेरी सौ जगह प्रशंसा करेंगे, और इन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर दिया तो मेरे मन में ऐसे ऐसे दोष आ गया। श्री कृष्ण कहने लगा नादान साधु संत या गरीब अमीर अब अपने घर पर भोजन करके सभी सोते हैं, भगवान सबको देता है, और तूने ये ऐसा अनुमान बना लिया कि उस संत को ऐसा बना खाना खिला दिया, तू तेरे मताभिमान और हो गया, और अक्षमा याचना करवे। अक्षमा याचना कैसे कर, किसके चरणों का चरणामृत पी, इसकी धूल भरे चरण धोके, जब तेरा भी पाप कटेगा तुम्हारा शंख भी बजेगा। तब द्रौपदी लाई प्रात ठाकर थाली ठाकर लाई और पर उस आसन पर बैठे परमेश्वर के सुदर्शन रूप में विराजमान भगवान के धूल भरी चरणों को धोया श्री द्रौपदी ने अपने हाथों, और डाल के उसको लोटे में और पीण लागी। आधा जब पी लिया तो श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दे, बांट कर खाते हैं अमृत को। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने पिया। अपना आत्माओं अब गरीबदास साहिब कहते हैं उस चूड़े का चरणामृत लिया तेरे कृष्ण चंद्र करतारा, तुम जिसको वाल्मीकि समझ रहे थे और जिसने तुम्हारा यु कार्य सिद्ध किया, उस वाल्मीकि के चरणों का चरणामृत पिया थोड़े कृष्ण चंद्र करतारा। पुणात्माओं जितने भी अच्छी आत्माएं हुई हैं वो जाति और मजहब से ऊपर को उठे हैं, तो जाति नहीं देखी जाती। परमात्मा कहते हैं कबीर जी अपनी वाणी में, जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अब जैसे तलवार तो मूल वस्तु है, म्यान एक अलग वस्तु है, तो म्यान के साथ हमने तलवार की आवश्यकता होती है, म्यान से लिंक नहीं। तो जाति से हमें कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, संत के पास क्या अनमोल ज्ञान है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि फिर वो जो चरणामृत पी लिया द्रौपदी ने और श्री कृष्ण जी ने अपने आप शंख ने आवाज की, और इतनी जोर से आवाज हुई कि स्वर्ग तक आवाज गई, और उस आवाज की धुन से बसंत जैसा मौसम बन गया, सब जितने भी पौधे थे सब हरे भरे हो गए और फल और फूलों से लदपद हो गए। इस प्रकार उन पांचों उन पांडवों का वो तीन ताप भी नष्ट हुए। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नायती नो तापम। परमात्मा कहा करते तुम कौन भगवानों का की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे ये समर्थ हैं कबीर परमात्मा, इनकी साधना से पुण्यात्मा आपका पूर्ण मोक्ष भी होगा और यहां भी सुख होगा जब तक आप रहोगे, और सदा सुखी हो जाओगे सतलोक में जाकर। बोलो सतगुरुदेव।